एक बार जननी अनवाए करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए। एक बार माँ कौशल्या भगवान श्री राम को स्नान करा करके और पलना में सुलाई और ये सो गए, पूरा पूरी नींद आ गई, सो गए थे पलना में। तो निजकुल इष्ट देव भगवान पूजा हेतु किन स्नान। तो माता कौशल्या फिर भगवान की पूजा करने के लिए स्नान की। जब बच्चा सो गया तब माता कौशल्या के इष्ट देव कौन है? भगवान विष्णु नारायण। घर में उनका विग्रह था, श्री विग्रह। जैसे आजकल हम लोग अपने घर में श्री विग्रह रखते हैं, तो महाराज दशरथ के यहाँ भी श्री विग्रह था, और खास करके माँ कौशल्या के लिए वो पूजा करती थी। तो अपने इष्ट देव भगवान की पूजा करने के लिए उसने स्नान किया, और स्नान करने के बाद करी पूजा, नैवेद्य चढ़ाया, भगवान को नैवेद्य अर्पित किया। नैवेद्य का अर्थ है निवेदन करने योग्य, अर्थात भोग रखा खाने के। और आप गई जहां पाक बनावा, और माता कौशल्या गई किचन में, रसोई में जहां पाक बनाया जा रहा था। तो भगवान को भोग लगा करके रख करके और चली गई। कहीं कभी कभी ऐसा होता है, कोई माता जी उधर भगवान को भोग रख भी लेती है और कुछ कार्य करती है, पकवान बर्तन साफ करना है, कुछ करना जो भी है। तो बहुरी मात तो हवा चली आई, भोजन करत तो देख सुख जाए। तो फिर जब भोग लेने के लिए, प्रसाद लेने के लिए जब गई, तो उसने देखा कि जिस बच्चे को राम को मैं पलना में सुलाई हूँ, वही वहाँ अल्टर पर बैठकर भोजन कर रहा है। बहुरी माँ तू तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। उसने देखा कि भगवान के भोग को मैं जिस बच्चे को सुलाई थी वो आकर के खा रहा। देख करके माँ भयभीत हो गई, हाय बाप ये क्या हो गया, कोई राक्षस हमारे बेटा को उठा कर यहाँ रख दिया क्या? वो तो सो गया था, तो पलना में सो गया था। तो गई जननी शिशुपहि भयभीता, वो डरती हुई बच्चे के पास गई और देखने लगी, वही मेरा बेटा ही है ना, सब चीज एकदम मिलता था। देखा बाल तहां पुनिसु, अच्छा वहां से डरते हुए फिर गई, छोड़ दी बच्चे को खाते हुए। पलना में गई तो देखा बाल तहां पुनिसुता, तो बच्चा भी वहां सोया हुआ था, वही वहां बैठा था, तो वही वहां सोया था। तो बहुरी आई देखा सुत सोई, तो फिर आकर के देखती अल्टर पर, तो मेरा पुत्र ही है। हृदय कंप मन धीर न होई, हृदय कांपने लगा, मन में धैर्य नहीं हुआ। तो शंका है कोई न कोई राक्षस या असुर हमारे बच्चे को वहां से उठा कर यहाँ रख दिया, और बच्चा भगवान का प्रसाद जूठा कर रहा। अब बहुत चिंता में पड़ गई कि ये क्या क्यों हो रहा। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया न विशेष। वहां पलना में और इधर भगवान के पूजा के स्थान में, यहाँ वहां दुई बालक देखा, दो बालक देखा, बस एक ही बालक को दो तरह दो जगह। तो मति भ्रम मोर की आन विशेष, फिर सोचना कहीं मेरे मति में भ्रम तो नहीं हो गया है कि कोई विशेष कारण है क्या है। एकदम चिंता में पड़ गई, अवाक हो गई। तो भगवान श्री राम देखे कि माँ व्याकुल है, तो हंसने लगे। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। भगवान मधुर मुस्कुराने लगे। इसके बाद माँ को अपना विराट रूप दिखाए वहीं पर, जैसे अर्जुन को दिखाए, माँ यशोदा जी को दिखाए, वैसे दिखाए। देखरावा मा तुहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। माँ को रूप दिखाया जिसमें एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लगा हुआ था, ये सब दिखाया भगवान ने अपने शरीर में ही। अग्नि तरह विशी शिव चतुरानन, बहुगिरी सरित सिंधु मही कानन। अनगिनत सूर्य भगवान के उस विराट रूप में, अनगिनत सूर्य, असंख्य चंद्रमा, असंख्य शिव, असंख्य ब्रह्मा, बहुगिरी अनेक पर्वत समूह, सरिताएं, समुद्र, पृथ्वी और वन, काल कर्म गुण स्वभाव, सौ देखा जो सुना न काऊ, उन सब चीजों को भी माँ कौशल्या ने देखा जिनको उसने सुना भी नहीं था। एक साथ करोड़ों करोड़ों सूर्य थोड़े उगते हैं दो नहीं उगते हैं, लेकिन वो जो सुनी नहीं थी वो भी सब देखी। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर खाड़ी। और उसने माया को भी देखा, और जो माया भयभीत होकर भगवान को हाथ जोड़कर खड़ी थी, अथवा मां स्वयं ही भयभीत हो गई। तन पुलकित मुख बचन तन पुलकित मुख बचन नयन मुंदि चरण निशिर नावा। तो शरीर में सिहरन हो गई, पुलक हो गया, मुख से बचन नहीं आ रहा था, वो आंख बंद करके और भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी, विराट पुरुष के वो तो बच्चा ही विराट पुरुष बन गया था। तब भगवान देखे कि मेरी माँ बहुत विस्मय में पड़ गई है, आश्चर्य में, तो वे पुनः शिशु रूप धारण कर लिए। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। फिर बच्चे के रूप में हो गया, अपना विराट रूप समेट लिए। अस्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। और माँ भय के मारे स्तुति भी नहीं कर रही थी, कोई स्तुति नहीं कही की जा रही थी, वो बार बार सोच रहे थे कि जगत पिता को मैं अपना पुत्र मानती हूँ, कितनी अपराधनी हूँ, ये तो जगत के उत्पादक है, ईश्वर है, पालन करता है, और मैं इनको पुत्र मानती हूँ। इसके बाद भगवान लगे समझाने माता को, हरि जननी बहुविधि समझाई, यह जन कतहु कहसि सुनमाई। भगवान बहुत समझाए माँ को, माँ चिंता मत करो, मैं यह बताने के लिए तुमको रूप दिखाया कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, लेकिन माँ इस बात को किसी से मत कहना। वास्तव में भगवान श्री राम का अवतार मर्यादा का अवतार, वे नहीं चाहते थे कि संसार में लोग ये समझें कि मैं ईश्वर हूँ, और रावण को पता न लग जाए कि ये भगवान है, ये भी वो चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने आज तक किसी को मना नहीं किए कि मत कहना कि मैं भगवान हूं, ऐसा में कहते। अर्जुन को दिखाए, माँ जसोदा को उसे पहले दिखाए, दो बार दिखाए, लेकिन मना नहीं किए, और न तो इनको मानी कि ये भगवान है जब वो मानी ही नहीं भगवान है तो क्यों मना करे बताइए। भगवान ने मना नहीं किया, ऐसी लीला किया कि माँ को भ्रम हो गया कि ये भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो मेरा बच्चा है। लेकिन यहाँ पर भगवान ने मना किया कौशल्या जी को, तुम इस बात को मत कहना। तो बार बार कौशल्या जी ने विनय किया भगवान से कि मुझे आपकी माया कभी न व्यापे, क्योंकि आप प्रभु हैं। तो बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा अति आनंद दासन कह दीन्हा। भगवान श्री राम अनेक प्रकार से बाल चरित किए और अपने दासों को अपने सेवकों को बहुत आनंद दिए। इसके बाद गुरु ने चूड़ाकरण किया। चूड़ाकरण का अर्थ होता है केश को मुड़ करके और शिखा छोड़ना, इसको चूड़ाकरण कहते हैं। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो शुरू से उनके केश बढ़े रहते हैं, श्री राम थोड़ा बड़े हुए तो उनका चूड़ाकरण किया गया सभी भाइयों का। और ये विद्यालय में भर्ती किए गए पढ़ने के लिए। अभी स्लेट पकड़े होंगे, धीरे धीरे जाएंगे, नर्सरी में भर्ती किए गए। परम मनोहर चरित अपारा करत फिरत चारिउ सुकुमारा मन क्रम वचन अगोचर जोई दशरथ अजिर विचार प्रभु सोई। जिनको मन वचन और कर्म से शरीर से समझा नहीं जा सकता, समस्त इंद्रियों से परे हैं, वे प्रभु दशरथ जी के आंगन में विहार कर रहे हैं, प्रकट देखा जा सकता है। अब उनकी भोजन लीला का थोड़ा वर्णन करते हैं। भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजी बाल समाजा। श्री राम बाल समाज में खेलते रहते थे। बाल समाज मतलब बच्चों का समाज और अपने ढंग का खेल। तो राजा दशरथ बुलाते थे किसी के द्वारा भोजन के लिए बुलाओ, बिना उनके आए भोजन नहीं करते थे। तो कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुकी प्रभु चलत पर आई। जब कौशल्या जी बुलाने जाती थी, आओ आओ बहुत खेल लिया, तुम्हारे पिताजी बैठे हैं भोजन के लिए, तुम्हारे बिना नहीं खाएंगे, तुम आओ आओ, तो ठुमुक ठुमुक कर भाग चलते थे, नहीं अभी नहीं खाएंगे। खेलने में इतना आनंद आ रहा था कि भोजन की कोई चिंता नहीं थी, बच्चों के साथ खेलने में। तो निगम नेति शिव अंत न पावा, वेद और वेद जिनको नेति नेति कहते हैं, अप्राकृत बताते हैं प्रकृति से पार, और भगवान शिव जिनका अंत नहीं पाते हैं, ऐसे प्रभु को दौड़ करके जननी पकड़ ली। ताहि धरे जननी हठि धावा, दौड़ करके पकड़ ली। जिनको वेद पार नहीं पाता उनको पकड़ करके लाई। धूसर धूरी भरे तनुआए भूपति बिहसी गोद बैठाए। धूल भरा हुआ था शरीर में, खेले थे बच्चों के साथ, तो महाराज दशरथ धूल से भरे हुए शरीर को गोद में बैठा। भगवान की शोभा है, श्री कृष्ण भी इस तरह से धूली धूसरित शरीर से शोभा देते रहते थे। माँ यशोदा धूल झाड़ती थी तो फिर जाकर के लौट लेते थे, बच्चों के साथ खेलते थे। तो कभी कभी बच्चे कहते थे, माँ ये लगता है कि पहले जन्म में सुअर जरूर रहा होगा। तो सुअर तो रहा ही था जन्म, इसको धूली में लौटने में और कीचड़ में लौटने में बहुत आनंद आता है। तो महाराज दशरथ धूल से दूसरित शरीर को गोद में ले लिए और खिलाने लगे। खिलाते थे भूपति बिहसी गोद बैठाए, भोजन करत चपल चित इतौ ते अवसर पाए। उनको जबरदस्ती पकड़ कर मां लाई थी कौशल्या जी, और महाराज दशरथ खिला रहे थे। तो ये इनका चपल चित था, ये सोचते थे कि कब अवसर मिले और भाग जाए, कब अवसर मिले भाग जाए बाल समाज में, बच्चों के समाज में। भोजन करत चपल चित इतौ ते अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाए। क्या भोजन कराया जा रहा था इनको? दही भात, दधि और ओदन। ओदन माने भात, चावल और दही, दही भात सान करके खूब सुंदर दही स्वादिष्ट और चावल फर्स्ट क्लास का सान करके खिला रहे थे, पकड़ करके खिला रहे थे, ये खा रहे थे, दो चार कौर खाए, अभी मुख में दही और उदन लपटा हुआ था और तब तक अवसर पाकर के भाग चले खेलने के लिए। और उधर भाग कर हंसते हैं, किलकत किलकत का अर्थ है हंसते हैं, दही भात लगा हुआ है मुख में और भाग चले, वो अपने हाथ से नहीं खा रहे थे, पिताजी खिला रहे थे, माँ खिला रही थी, इस बीच में अवसर पाकर के भाग गए।
सारद
शेष संभु श्रुति गाए
जिन कर्म इन संग जिन कर्म इन संग नहीं राता ए जन ए जन वंचित
बहुत अच्छा भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाय भाज चले किलकत मुख दधिवोदन लपटाय। पता नहीं क्यों उस समय वीडियो कैमरा नहीं था तो भगवान के मुख में दही भात लगा हुआ है, भाग रहा है, हंस रहा है, इस फोटो को ले लिया गया होता। पर कोई बात नहीं, तुलसीदास जी ने यह जो वर्णन किया है यह वीडियो कैमरा से कम नहीं है, है नहीं? अब आगे वो कहते हैं बाल चरित अति सरल सुहाए। भगवान श्री राम के बाल चरित अति सरल है, सरल और सुहाए सुंदर। भगवान कृष्ण का बाल चरित सरल नहीं है सरल का अर्थ होता है सीधा साधा, और भगवान श्री कृष्ण का बाल चरित जितना टेढ़ा हो सकता है उतना है उतना है। दिन भर में एक सबसे कम झूठ तो बोलते ही नहीं जैसे मैं कहा भगवान श्री राम राजाओं की लीला करते थे, बलि महाराज ने कैसे दान दिया, कोई आते थे ब्राह्मण बन करके, कोई बच्चा आता था तो बलि महाराज बनकर दान देते थे, या दुष्टों का दमन करना, अच्छे लोगों को पुरस्कार देना, मंत्रियों से पूछना हमारी जनता सुखी है ना, ये है ना, ये चलता था। यहाँ वर्णन आया राजलीला ज्यादा करते थे, और भगवान श्री कृष्ण का चोरी के प्लान की लीला चलती थी कैसे सफल होंगे, कैसे भागना है यहाँ से, उस घर से दही लूटना है, माखन चुराना है, ये करना है, वो करना है, इनके बहुत समय जाता था बलराम जी से प्लान करने में अपने सखाओं के। भगवान श्री राम का चरित्र सरल है, सीधा साधा है, ये खेल में भी एक बार भी झूठ नहीं बोले हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि खेलने में भी श्री राम कभी झूठ नहीं बोले, ऐसा सरल स्वभाव भगवान का। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की लीला बाल लीला अधिक आकर्षक है सब प्रकार से, लेकिन फिर भी एक सिंप्लिसिटी भी सरलता भी एक गुण है लीला का, तो इस रूप में किए बाल चरित अति सरल सुहाए शारद से शंभु श्रुति गाए। सरस्वती जी, भगवान शेषनाग, भगवान शिव और वेद, ये सब भगवान श्री राम की बाल लीला का गान किए हैं। जिन कर्म नहीं अब कहते हैं जिन कर्म नहीं सन नहीं राता ते जन वंचित किए विधाता। जिन लोगों का मन इन लीलाओं में नहीं रमा उनको ब्रह्मा ने वंचित कर दिया, अर्थात उन्हें अति भाग्यहीन बनाया ब्रह्मा ने। इन लीलाओं में जिनका चित्त आकृष्ट नहीं हुआ, जिनकर मन इन सन नहीं लाता, इनमें आसक्त नहीं हुआ श्री राम की लीलाओं में, तेजन वंचित किए विधाता, उन लोगों को विधाता ने वंचित किया, अर्थात असली लाभ से वंचित किया, उनको महादुर्भाग्यपूर्ण बना दिया। इस जीवन का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, भगवान का नाम न गाना, उनकी लीला न गाना, न सुनना, यही दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ा सौभाग्य है भगवान की लीलाओं को, नाम को गाना और श्रवण करना। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आनंदाम बुद्धिवर्धनम, यह भगवान का नाम संकीर्तन आनंद के समुद्र को बढ़ाता रहता है। स्वयं आनंद का समुद्र है यह कहना इसकी हीनता है, आनंद के समुद्र को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं भगवान शिव कि जिन लोगों का मन इन लीलाओं में नहीं रप्त हुआ उनको विधाता ने बहुत घाटा में डाला, उनको भाग्यहीन बनाया। अब जब बच्चे थोड़ा बड़े हुए तब की लीला कहते हैं, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। इनको जनेऊ दिया गया, उपनयन संस्कार किया गया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु के घर में, गुरुकुल में जब गए पढ़ने के लिए वशिष्ठ जी के यहाँ, तो थोड़े समय में ही श्री राम सारी विद्याएं पढ़ गए। अरे ये कौन आश्चर्य है, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़े यह कौतुक भारी। जिनके सहज निःश्वास से ये वेद निकले हैं, जिनके सहज अनुभव है, आदमी सांस लेता है तो उस समय कोई ज्ञान की चर्चा नहीं करता, भगवान जो सांस लिए हैं छोड़े हैं वही उनका अनुभव है, जो इतना ज्ञान पूर्ण है वेद। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो प्रभु पढ़े यह कौतुक भारी। वो पढ़ने गए यही भारी आश्चर्य, क्या जरूरत है पढ़ने की। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। प्रायः समस्त राजाओं की लीलाएं भगवान श्री राम किया करते थे, खेलने में भी, खेलने में भी न्याय करना। कुछ बच्चे अपराधी के रूप में पकड़े जाते थे, चोर के रूप में, तो उनको ये देते थे, निर्णय देते थे, इसको ये दंड दो, इसको ये दंड दो, राज्य में ये व्यवस्था करो, ये व्यवस्था करो, ये करो, वो करो, और राजाओं का चरित्र पेश करते थे। कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चरा चर मोहा, जिन भी थिन बिहर ही सब जभाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। हाथ में धनुष बाण बहुत सुंदर लगता था, रूप देख करके चर की क्या अचर भी मोहित हो जाते थे। जिन गलियों में श्री राम अपने भाइयों के साथ विहार करते थे, उस गली में सारे लोग अपना काम धंधा छोड़ करके और एक टक श्री राम को देखा करते थे। इतनी सुंदर लीलाएं होती, गलियों में लट्टू खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, इसको देख करके सब लोग चकित हो जाते थे, रूप देखने में मस्त हो जाते थे। इस प्रकार कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब कह राम कृपाल। अयोध्या के कौशलपुर के जो भी वासी नर नारी बालक वृद्ध, प्राण होते प्रिय लागत सबको राम कृपाल। श्री राम सबको प्राण से भी अधिक प्रिय लग रहे थे। प्राण कितना प्रिय है किसी व्यक्ति को, अभी किसी का गला दबाया जाए, नाक दबाई जाए, तो वो सांस लेने के लिए व्यग्र हो जाएगा, सांस लेना इतना प्रिय है, इसको प्राण कहते हैं। प्राण से भी अधिक प्रिय लगते थे श्री राम, गलियों में खेलते थे, बीथिन बिह रही बीथियों में विहार करते थे, तो सबको प्राण प्रिय लगते थे। कभी कोई उद्विग्न नहीं हुआ श्री राम से, कभी कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में भी कोई उद्विग्न नहीं हुआ, लेकिन उद्वेग की लीला करते थे सब लोग, पर भगवान श्री राम तो कभी किसी को उद्वेग नहीं दिए। प्राण होते प्रिय लागत सब कह राम कृपा, भगवान श्री राम सबको प्राण से भी प्रिय लगते थे। इस तरह भगवान की बाल लीला कुछ कही गई, बधाई गाया गया। अब हम यहीं पर विश्राम देते हैं और परम पूज्य श्री लोकनाथ गोस्वामी को बहुत धन्यवाद, ये आए कथा में बैठे। वास्तव में इस कान में कीर्तन के सम्राट हैं, भक्तों को बहुत आश्वासन मिलता है, उत्साह मिलता है इनके कीर्तन से, कथा से, पद गान से। और आप देखें ये रामायण की चौपाइयां ऐसी है कि वास्तव में जरूरत है कि कुछ गायक इसको गाया करे, गाने से आनंद और अधिक आता है। बहुत धन्यवाद आप सबको भगवान के इस जन्मोत्सव में भाग लिए। भगवान श्री राम आप पर अवश्य कृपा करेंगे। हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण, कृपया बैठे रहे हमारे।